तो आज बहुत पवित्र दिन है, व्यासदेव जी का प्राकट्य दिवस और सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव, और आज से चतुर्मास भी शुरू हो रहा है। तो आज इन्हीं विषय में फिर चर्चा करेंगे, इसलिए कुछ श्लोक नहीं पढ़ रहे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनो स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददा स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं सागर जातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना रघुनाथ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये मंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पहले थोड़ा चतुर्मास और व्यासदेव जी के बारे में बोलेंगे, उसके बाद सनातन गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज से चतुर्मास भी शुरू हो रहा है, तो सभी संप्रदाय में सारे जितने हर जगह इसको बहुत विशेष समय माना जाता है, ये चार महीने विशेष करके कुछ साधना करने के लिए या जिसको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। तो आप देखेंगे जैनियों में और भी जो निराकारवादी हैं, हर संप्रदाय हर तरह के लोग जो हमारे वैदिक परंपरा से हैं, इस चातुर्मास को बहुत विशेष मानते हैं। इस चार महीने में कुछ विशेष तपस्या या कुछ विशेष व्रत सबको लेते हैं। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में भी जैसे सनातन गोस्वामी जी ने जो हरि भक्ति विलास लिखा है उसमें सारे नियम हैं कि हमें क्या क्या उत्सव बनाना चाहिए, क्या व्रत करना चाहिए। उसमें भी उन्होंने वैष्णवों के लिए विस्तार से लिखा है कि चतुर्मास में क्या आवश्यकता है। और श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बहुत सिंपल कर दिया है, बहुत सरल कर दिया है हम सब भक्तों के लिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह चैतन्य चरितामृत में कि चतुर्मास यानी प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति के कार्यों को ज़्यादा करना और इंद्रिय तृप्ति कम करना, और साथ में प्रभुपाद जी हमें चार वो दिए हैं कि चार महीने में क्या चीज़ छोड़ना है। मैं देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ एक मिनट, अगर वो प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में एक जगह लिखते हैं कि चतुर्मास के बारे में निकल नहीं रहे। तो महाप्रभु की लीला में भी हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास में कहाँ रुके थे, श्रीरंगम में। जब वो दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो श्रीरंगम में रुक गए थे, क्योंकि जो वो इस समय बारिश होता है, जैसे अभी आज हम देख रहे हैं बारिश, चतुर्मास शुरू हो गया, तो इसलिए जो सन्यासी होते हैं ऐसे तो भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन इस चार महीने में उनको एक स्थान में रहते हैं, क्योंकि इस समय घूमना बहुत मुश्किल होता है। पहले तो बहुत बारिश होती थी, अभी तो कई वर्षों से बारिश ही नहीं हुई, इस साल कम से कम थोड़ी बारिश हुई है, तो इस समय इसलिए सन्यासी लोग बाहर नहीं निकलते। तो चार महीने तक एक ही जगह में रहते थे, और वहीं पे अपना भजन करते थे। तो इसलिए महाप्रभु भी जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो इस चतुर्मास उन्होंने कहाँ बिताया था, श्रीरंगम में, जहाँ पे वेंकट भट्ट जो थे वहाँ के हेड प्रीस्ट थे, उनके पुत्र थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो उनके साथ महाप्रभु 4 महीना वहाँ पे रहे और कृष्ण कथा किए। तो प्रभुपाद जी हमारे लिए बहुत साधारण नियम बनाए हैं कि हमें पहले महीने में क्या नहीं खाना चाहिए, शाक, दूसरे महीने में दही, तीसरे महीने में दूध और चौथे महीने में उड़द दाल। तो ये बहुत सरल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने हमें इतना कहा है, कम से कम इतना हमें पालन करना चाहिए। और मेन जो सिद्धांत है वो क्या है कि हम अपने जो शारीरिक कार्य कम करें, इंद्र तृप्ति कम करें, खाना पीना सोना इत्यादि को हम कम करें और भक्ति के कार्य श्रवण कीर्तन को अधिक से अधिक बढ़ाएं। तो बहुत ऐसे भक्त हैं जो चतुर्मास में कई व्रत करते हैं, कई भक्त देखता हूँ मैं, कई भक्त ऐसे भी हैं जो पूरा चतुर्मास फलाहार करते हैं, कोई एक टाइम लेते हैं। लेकिन जो मुख्य चीज़ है वो है अगर जप बढ़ा पाए, श्रवण कीर्तन बढ़ा पाए चतुर्मास में, तो ये सबसे भक्ति के लिए लाभदायक है। तो इसलिए हमें चतुर्मास को हमें उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें ध्यानपूर्वक चतुर्मास का ही पालन करना चाहिए जो 4 प्रभुपाद जी ने बताया है हर एक महीने। और कोई मुश्किल नहीं है इसको छोड़ना, और बताते हैं कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अभी जो चतुर्मास है तो इसमें जैसे जो अगला महीना आएगा उसमें दही खाना वैसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो दही छोड़ना वैसे अच्छा है। उसके अगले महीने में दूध नहीं पीना, क्योंकि उस समय कहते हैं कि दूध थोड़ा सा सही नहीं होता, क्योंकि गाय जो वातावरण रहता है। तो स्वास्थ्य के लिए भी ऐसा करना अच्छा है। तो ये है चतुर्मास के बारे में। और एक भी विशेष चतुर्मास से संबंध भागवत में जो आता है कि नारद मुनि जब छोटे थे अपने पिछले जन्म में, जब शूद्र के परिवार में जन्म हुआ था उनका, तो चतुर्मास के समय जो सारे भक्त थे वो एक जगह रुक गए थे और उनकी सेवा नारद मुनि और उनकी माता ने किया और उनसे कृष्ण कथा सुने, और उसके प्रभाव से देखे नारद मुनि कितने महान वैष्णव बन गए और अगले जन्म में फिर नारद मुनि का नारद मुनि बने। तो ऐसे चतुर्मास से संबंध कई सारे संबंधित लीलाएं हैं भागवतम में, चैतन्य चैतामृत में। तो ये बहुत विशेष 4 महीना का समय है, तो हम सबको भी भक्ति में और ज़्यादा गंभीर होना चाहिए इस 4 महीने में। और व्यासदेव जी जो है, व्यासदेव जी आप सब जानते ही हैं कि हमारे सारे ग्रंथों की उन्हें रचना की, 4 वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद। तो आज उनका भी प्राकट्य दिवस है। उनके पिताजी का नाम है पारेश्वर मुनि और माता का नाम सत्यवती। उनका जन्म कैसे हुआ था कि पारेश्वर मुनि भी बहुत महान वैष्णव थे और उन्होंने विष्णु पुराण की रचना की है पारेश्वर मुनि ने। तो वो त्रिकालदर्शी थे, जो ऐसे महान जो भक्त होते हैं संत होते हैं वो त्रिकालदर्शी रहते हैं, उनको पता है रहता है कि इस समय क्या है, आगे क्या होने वाला है। तो एक बार वो नौका में थे यमुना नदी में, स्थान पास में ही है, कानपुर के पास एक स्थान है जहाँ पे वो माना जाता है, जो स्थान जहाँ पे लीला हुई। तो एक नौका में जा रहे थे और नौका चला रही थी एक स्त्री कन्या चला रही थी, का नाम था मत्स्यगंधा, मछुआरे की लड़की थी वो। और वो अपना नौका चला रही थी और उसमें पारेश्वर मुनि बैठे थे। तो अचानक से उन्होंने देखा कि एक विशेष मुहूर्त आ गया, वो जो त्रिकालदर्शी होते हैं उनको ये भगवान उनको अनुभूति करा देते हैं। तो वो अचानक से देखे कि ये तो बहुत विशेष समय है और इसमें एक महान पुरुष का प्राकट्य होना है इस समय। और फिर उन्होंने अपना जो भी जो क्या उसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकल कुछ, उन्होंने ज्योतिषी सब उन्होंने हिसाब किताब किया, तो उनको पता चला रे इनके पिताजी तो मेरे को ही बनना है, अब क्या करें, बीच में नदी के बीच में नौका में है तो कैसे संतान उत्पन्न करेंगे। तो उन्होंने उन माताजी जो मत्स्यगंधा जी थे उनको उन्होंने निवेदन किया कि ऐसे ऐसे बात है, कोई विशेष महापुरुष का जन्म भी होना है, तो आप उनकी माँ बनना स्वीकार करेंगे। तो उनको थोड़ी, अब वो उनका शादी भी नहीं हुआ था, उनको इतनी लज्जा हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये विशेष सेवा है और मेरे आशीर्वाद से आप कुछ किसी को वो नहीं होगा। तो फिर वो तैयार हो गए। तो उस समय वहीं पे व्यासदेव ने एक द्वीप बना दिया अपने बल से, या द्वीप था या बना दिया इतना ध्यान नहीं है, लेकिन एक द्वीप बना दिया और वहीं पे तुरंत व्यासदेव ने अपने पारश्रम ने अपने प्रभाव से वहां चारों तरफ बादल बना दिया और वहीं पे उनका संग करके और ये महान व्यासदेव जी का उत्पन्न हुआ। इसलिए उनका नाम था, उनका नाम है कृष्णा द्वैपायन व्यास। उनका रंग सांवला है इसलिए कृष्णा द्वैपायन, द्वीप में उनका जन्म हुआ। ये द्वीप आज भी है, मैं तो गया नहीं, लेकिन कहते हैं कानपुर के पास में यमुना नदी में द्वीप आज भी है जो व्यासदेव जी का प्राकट्य स्थान है। कृष्णा द्वैपायन व्यास उनका पूरा नाम है और ये भगवान कृष्ण के शक्तावेश अवतार है जो विशेष करके आए हैं इन सब ग्रंथों को लिखने के लिए, क्योंकि कलयुग के पहले वेदों को लिखने की आवश्यकता नहीं थी, सब श्रुतिधर थे। लेकिन अभी जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तो आवश्यकता थी कि सारे वेद को लिखा जाए। और विशेष सबसे जो महान योगदान है व्यासदेव जी का वो क्या है, श्रीमद् भागवत। आप सब जानते ही हैं कि व्यासदेव ने सारी ग्रंथों की रचना की, महाभारत, चार वेद, पुराण, सब कुछ रचना किया व्यासदेव जी ने। और व्यासदेव जी का आश्रम कहाँ है, आज भी है, व्यासदेव आज भी है, उनका आश्रम बद्रीनाथ के पास में अलकनंदा के किनारे है। ये श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है कि कैसे सरस्वती नदी के किनारे हाँ और बद्री का आश्रम में व्यासदेव जी विराजमान है। और वहीं पे व्यासदेव जी सब कुछ रचना करने के बाद में उनके चार मुख्य शिष्य थे हाँ, उनको उन्होंने चार वेद का प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया, किसको यजुर्वेद का ज्ञान दिया, किसको ऋग्वेद का ज्ञान दिया, किसको अथर्ववेद का ज्ञान दिया, ऐसे हजारों हजारों महान शिष्य उनके, महान पंडित उन्होंने अपने शिष्य बनाए और इतना उन्होंने प्रचार किया, इतने ग्रंथ लिखे, लेकिन अंदर से वो संतुष्ट नहीं थे। और फिर नारद मुनि उनके सामने प्रकट हुए वहीं पे बद्रिका आश्रम में, उनके उनके आश्रम में, व्यासदेव जी के आश्रम में। और फिर नारद मुनि उन्होंने बताया कि क्या कारण है उनका, जो अंदर से वो संतुष्ट नहीं थे, क्या कारण बताया नारद मुनि ने कि उन्होंने ग्रंथ तो बहुत सारे लिखे लेकिन उसमें किसी ग्रंथ में उन्होंने जो शुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं दिया। क्योंकि बाकी जितने पुराण हैं, वेद हैं, उसमें ज्ञान कांड, कर्म कांड, ये सब ज्यादा है, भक्ति है लेकिन बहुत गौण रूप में, छुपे हुए रूप में, थोड़ा बहुत। तो व्यासदेव जी ने कहा अरे लोग तो ऐसे ही इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं और आप वेदों के माध्यम से उनको इंद्र तृप्ति करने के लिए और बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई ये यज्ञ करो, ये प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग लोक चले जाओगे। और आज भी देखिए जो उसके बाद क्या हुआ कि इसी वेद के सहारा लेके लोग पशु हत्या कर रहे हैं। भाई वेद में तो लिखा है अश्वमेध यज्ञ करना है और ये पशुओं की हत्या करनी है। तो नारद मुनि सब देख सक रहे थे अपने दूरदृष्टि से, कहा कि व्यासदेव आपने बहुत बड़ी गलती की, हाँ आपने इतने सारे ग्रंथ लिखे लेकिन आपने लोगों का बीमारी को और बढ़ावा दे दिया। लोगों की बीमारी क्या है, इंद्र तृप्ति, और आपने वेदों के द्वारा इंद्र तृप्ति को और बढ़ाने के लिए बोल दिया। तो नारद मुनि उनको डांटे और बोले कि तुम ऐसा ग्रंथ लिखो, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन प्रतिश्लोक अवध्यत्यपि नामान्यन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। ने कहा कि आप ऐसे ग्रंथ लिखो जिसमें कि केवल भगवान के शुद्ध नाम रूप गुण लीला का गुणगान हो। नामानि अनंतस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव, और ऐसे ग्रंथ को साधु पुरुष गाएंगे और सुनेंगे। और ये ग्रंथ क्या है, जनताग विप्लव, जो पापी, जो पाप से डूबे हुए जो जनता है, साधारण जीव है, उनके हृदय में इससे एक परिवर्तन आएगा, एक क्रांति आएगी। तो आप ऐसे ग्रंथ की रचना करो, हालांकि वो ग्रंथ अगर व्याकरण में सही भी नहीं है लेकिन ये ग्रंथ मूल्यवान है। और अगर दूसरे हाथ में अगर आप बहुत सारे अच्छे व्याकरण के नियम पालन करके बहुत सारे ग्रंथ लिख रहे हैं लेकिन अगर उसमें भक्ति नहीं है, वो किसके समान है, कौवे के तीर स्थान के समान। यद्वा क्षेत्र पदम हरेर यशो, वो एक श्लोक है कि वायसाम तीर्थम, अगर आप नयद वच क्षेत्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिषित तद वायसाम तीर्थम उशंति मानसा, तो ये वायस तीर्थ है यानी कौवे का तीर्थ स्थान है। तो इस तरह नारद मुनि ने उनको बताया समझाया और फिर तुरंत व्यासदेव अपनी गलती समझ गए और उनको प्रणाम किए और फिर ध्यान में बैठे उसी सरस्वती नदी के किनारे और फिर लिखना शुरू किए श्रीमद् भागवतम जो अमल पुराण। तो व्यासदेव का सबसे बड़ा यही योगदान है हम सबके लिए। तो व्यासदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं कि उनकी कृपा से हमें सारे ग्रंथ मिले हैं, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम। चैतन्य चेतामृत विष्णु का आता है कि कृष्ण को भूल के हम सब जीव इस संसार में बद्ध हैं, इसलिए भगवान कृपा करके व्यासदेव के रूप में सारे ग्रंथ लिखे ताकि हम फिर से जीवन के लक्ष्य को समझ पाए और भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ पाए। तो इसलिए हम सब बहुत कृतज्ञ हैं श्री व्यासदेव जी के प्रति। तो आज उनके प्राकट्य दिवस में उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम पे वो कृपा करें ताकि जो उनके लिखे हुए ग्रंथ है, विशेष करके श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम, हम ताकि उनके आशीर्वाद से हम नियमित रूप से पढ़ पाएं और उसमें जो ज्ञान दिया है वह हमारे हृदय में प्रकट हो और उसको पालन कर पाए। श्री व्यासदेव की जय। और इसलिए जो बाकी कई संप्रदाय में आज ही के दिन गुरु की व्यास पूजा बनाते हैं, क्योंकि जो गुरु जो है वो व्यासदेव के प्रतिनिधि माने जाते हैं, इसलिए व्यास आसन भी कहते हैं कि जो प्रवचन देते हैं वो व्यासदेव के प्रतिनिधि हैं। लेकिन हमारे वैष्णव संप्रदाय में जो आचार्य हैं, गुरु हैं, उनके असली जन्मदिवस यानी प्राकट्य दिवस पे ही व्यास पूजा बनाया जाता है। लेकिन ऐसे कई संप्रदाय हैं, विशेष करके जो मायावादी संप्रदाय हैं, उसमें आज ही के दिन वो सबकी पूजा करते हैं, कोई भी गुरु हो उनकी पूजा आज ही करते हैं, इसलिए आज गुरु पूजा भी आज इसलिए कहते हैं इसे। तो अब हम जो मुख्य विषय सनातन गोस्वामी, उनके बारे में तो अनंत लीला है, कई घंटों तक बोला जा सकता है। तो अभी थोड़ा समय में जो भी सनातन गोस्वामी के बारे में कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, फिर आप सब बोल सकते हैं। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को, श्री जीव गोपाल को। एक दोहरा सकते हैं उसका, त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडल पतिम, त्यक्त्वा तूर्णम शेष श्रेणीम सदा तुच्छव, भूत्वा दीन गणेश को करुणया, कौपीन कंथाश्रितो गोपी भावर सामृताब्दलहरी, कल्लोल मग्नो मुहु, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगो, श्री जीव गोपालको, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगो, श्री जीव गोपालको। तो ये जो छह गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, तो इनका बहुत विशेष स्थान है हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में। विशेष करके जो वृंदावन में रहते हैं, हम सबको तो उनका पूर्ण आश्रय लेना चाहिए षड गोस्वामी का। ए छय गोसाई करी चरण वंदन, जा होते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। ए छय गोसाई जब ब्रज कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिल प्रकाश। तो छह गोस्वामी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है उसको इन्होंने ही इसका प्रचार प्रसार किया। ऐसे महाप्रभु स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखे, महाप्रभु केवल शिक्षाष्टकम, केवल 8 श्लोक रचना की महाप्रभु ने, लेकिन ये जो 6 गोस्वामी हैं उनको महाप्रभु ने अपना विशेष कृपा प्रदान किया और उनको आज्ञा दी, 4 आज्ञा दी थी चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को और बाकी गोस्वामियों को भी। पहला था कि जो भगवान कृष्ण के जो तीर्थ स्थान जो लुप्त हो गए हैं उनका पुनरुद्धार करना, क्योंकि भगवान तो 5000 साल पहले लीला किए थे, उसके बाद भगवान सब इसको छुपा लिए थे जितने तीर्थ स्थान हैं। लेकिन महाप्रभु चाहते थे कि लोग इसका लाभ उठाएं, सब तीर्थ स्थान लोग जा पाए वृंदावन में, भगवान ने कहाँ पे क्या लीला की थी। तो महाप्रभु ने पहला आदेश ही दिया सनातन गोस्वामी को कि आप जो लुप्त तीर्थ स्थान है उसका उद्धार कीजिए। दूसरा आदेश दिया कि जो ग्रंथ रचना कीजिए जो कि सारे वेदों का सार लेके राधा कृष्ण की भक्ति का मार्ग को स्थापित करे, ये स्थापित कर दे कि जीवन का सबसे ऊंचा उद्देश्य है राधा कृष्ण के चरणों में भक्ति करना। तीसरा आदेश दिया कि अपने आचरण द्वारा ये दिखाना कि कैसे एक वैष्णव या एक सन्यासी को कैसे जीवन यापन करना चाहिए। और चौथा कि प्रचार करना इसका, और मंदिर के निर्माण भी करना, राधा कृष्ण की मंदिर निर्माण करना और उनके भक्ति का कैसे उनकी पूजा करना चाहिए का प्रचार करना। और सनातन गोस्वामी को विशेष करके महाप्रभु ने यह भी कहा था कि आप विशेष करके ऐसे ग्रंथ लिखना इसमें वैष्णव सदाचार के बारे में या वैष्णव कैसे आचरण करना चाहिए, अलग अलग त्यौहार क्या है, अलग व्रत क्या है, ये सब के बारे में वर्णन करने के। तो इसलिए सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास जो लिखा वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी जो भी हम अभिषेक करते हैं जन्माष्टमी या जो भी उत्सव का हम पालन करते हैं वो सब हरिभक्ति विलास से ही लिया गया, जो दीक्षा होती है या जो भी हमारे जितने वैष्णव त्यौहार है वो सब हम हरिभक्ति विलास से ही पालन करते हैं। कार्तिक मास में क्या करना चाहिए ये सब हरिभक्ति विलास में लिखा गया है। और सनातन गोस्वामी ने और कई ग्रंथ की रचना की, जैसे बृहद भागवतामृत जो कि बहुत विशेष ग्रंथ है, जिसमें वो भक्ति की स्थापना करते हैं कि कैसे गोलोक वृंदावन की प्राप्ति सबसे जीवन का परम सिद्धि है। और ऐसे कई ग्रंथ सनातन गोस्वामी लिखे हैं, विशेष करके दशम स्कंद पे उनकी टीका जो है वो विशेष है, उसे कहते हैं दशम टिप्पणियां, शायद ऐसा कुछ नाम है। लघु तोषणी, दशम चरित्र और दशम टिप्पणी, हरिभक्ति विलास, ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। तो बहुत विशेष योगदान है सनातन गोस्वामी जी का। थोड़ा सा उनके जीवन में आज हम चर्चा करते हैं। तो सनातन गोस्वामी के जो पूर्वज थे वो कर्नाटक से थे, कर्नाटका जो दक्षिण भारत में है वहां के सारस्वत भरद्वाज गोत्र से, सारस्वत ब्राह्मण समाज से थे उनके जो पूर्वज थे। और 12वीं शताब्दी में बताते हैं कि सर्वज्ञ जगत गुरु थे जो एक बहुत बड़े विद्वान थे, यजुर्वेदी थे, उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध देव। और ऐसे करके आगे उनके वंशज में आगे आए रूपेश्वर, फिर उनके पुत्र हुए पद्मनाभ और उनके पुत्र हुए कुमारदेव, और कुमारदेव के पुत्र कई पुत्र थे, उनमें से तीन मुख्य थे जो कि रूप, सनातन और अनुपम बाद में बने। उनका नाम था अमर संतोष, वैसे पहले उनका नाम था। तो कुमारदेव उनके पिता और माता रेवती देवी, तो ये माता पिता हैं सनातन गोस्वामी के। और कर्नाटक से ये आ गए पूर्वी भारत की ओर, बंगाल में आके इन्होंने निवास करना शुरू किया पद्मनाभ जी, गंगा जी के किनारे। तो फतियाबाद नाम का स्थान है जहां पे उनका आज बांग्लादेश में है, जो जन्म स्थान है सनातन गोस्वामी का। और जब सनातन गोस्वामी छोटे थे तो एक बार उनके सपने में एक ब्राह्मण आके श्रीमद् भागवतम उनको उपहार के रूप में दिए, और जब वो जगे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ ये ब्राह्मण कौन थे। और उसी दिन वही ब्राह्मण असली में उनके पास आए और उनको श्रीमद् भागवतम दी, और उस दिन से सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त हो गए। दिन भर वो केवल भागवतम ही अध्ययन करते थे और श्रवण करते थे। और ये जो दोनों भाई हैं रूप सनातन, ये बहुत विद्वान थे, बहुत सारे उनमें अच्छे गुण थे, बहुत सारे भाषा जानते थे वो, संस्कृत, बंगाली, पर्शियन, कई सारे भाषा का ज्ञान था उनको, और बहुत दक्ष थे, बहुत निपुण थे हर कार्य में, मैनेजमेंट में बिल्कुल निपुण थे। तो सब जगह उनकी ख्याति फैल गई कि भाई दो इतने विद्वान हैं रूप और सनातन। तो नवाब हुसैन शाह को किसी ने कहा कि अगर आप ये दोनों को अगर अपने अपने साथ शामिल कर लेते हैं अपने मंत्रिमंडल में तो आपके लिए राज्य करना बहुत आसान हो जाएगा हिंदुओं के प्रति। क्यों? क्योंकि सारे हिंदू इनको सम्मान करते हैं, तो अगर ये आपके साथ आ जाएंगे तो आपको हिंदुओं के ऊपर शासन करना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो नवाब हुसैन शाह तुरंत वो दोनों को बुलाए, और वो तो नहीं चाहते थे कि इतने बदमाश राजा के अंडर नौकरी करना, लेकिन राजा ने उनको धमकी दिया अगर नहीं करोगे तो तुम्हें तो दंड देंगे ही देंगे, साथ ही साथ जितने हिंदू हैं उन पे हम और ज्यादा अतिक्रमण करेंगे और ज्यादा उनको सताएंगे। तो इस डर से तो रूप सनातन ने सोचा कि चलो कम से कम उनकी बात मान लेते, लेकिन हिंदुओं को और ज्यादा ये उनपे उनको पीड़ित करेंगे। तो रूप सनातन उनके मंत्री बन गए, और इतने वो योग्य थे कि बहुत जल्दी उनको नवाब हुसैन शाह ने सबसे महत्वपूर्ण स्थान दे दिया अपने मंत्रिमंडल में। सनातन गोस्वामी को अपना प्रधानमंत्री बना दिया और रूप गोस्वामी को वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर। और पूरी रूप से एक तरह से पूरा जो इतना बड़ा राज्य था उसको यही दो भाई चलाते थे। ये नवाब हुसैन शाह तो क्या वो केवल युद्ध में ही रहते थे, लोगों को मारना, नए नए राज्य को अतिक्रमण को उनके साथ युद्ध करना, तो इसी कार्य में लगे रहते थे। तो एक दृश्य देखें तो इतना बड़ा राज्य को यही दो भाई चला रहे थे, और अंदर से तो उनको बड़ा दुख था कि राजा के अंदर काम कर रहे, लेकिन अब कर रहे थे तो अपना कर्तव्य ठीक रूप से पालन कर रहे थे। इसलिए श्लोक में कहा गया ना, धीरा धीरा जन प्रिय प्रिय करो निर्मत सरो पूजितो। तो इनका विशेष गुण था कि जो पाषंडी थे या जो मुसलमान थे हर कोई व्यक्ति इनसे प्रेम करते थे रूप और सनातन गोस्वामी से, क्योंकि इनके अंदर कोई मात्सर्य नहीं था, सारे जीवों के प्रति दया भाव था, कृपा भाव था, इसलिए सारे जीव उनको प्रेम करते थे उनसे। तो राजा भी उनको बहुत स्नेह के साथ रखे थे दोनों भाई को, और उनको छोटे भाई मानते थे अपना राजा नवाब हुसैन शाह। बड़े बड़े उनके लिए महल बना दिए, राजमहल, बहुत उनको संपत्ति दिए। राम के लिए उस समय उनका राजधानी था, तो राम के लिए आज तो मैं तो ज्ञान नहीं कहते, आज भी उनका जो स्थान जहां पे उनका बड़ा बड़ा महल था रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को स्थान आज भी है। तो वहां पे हालांकि बाहरी दृष्टि से तो लगे थे राजकार्य में, लेकिन अंदर से तो वो महान वैष्णव थे। रूप और सनातन गोस्वामी कौन है? ये भगवान कृष्ण के नित्य लीला में मंजरी है, रूप मंजरी और लवंग मंजरी ना, नहीं हाँ, रूप मंजरी और लवंग मंजरी, रति मंजरी भी कहते हैं सनातन गोस्वामी को। तो ये तो भगवान के नित्य पार्षद है, तो बाहर से हालांकि सब राज्य कार्य में लगे थे, अंदर से तो उनको हमेशा राधा कृष्ण का ही चिंतन कर रहे थे, वृंदावन का विरह में चिंतन कर रहे थे। तो अपने महल में राम के लिए में उन्होंने छोटा राधा कुंड, श्याम कुंड, एक गुप्त वृंदावन बनाया, और वहां मदन मोहन जी का मंदिर बनाया राम के लिए में, मालदा में, आज के दिन बंगाल में, भारत में। तो वहां पे वो अंदर से बहुत विलाप करते थे, अंदर से बहुत उनको विरह की भावना थी राधा कृष्ण के प्रति, वृंदावन के प्रति। एक दिन उनके सपने में महाप्रभु भी आए, और बहुत वो आकर्षित हो गए महाप्रभु के प्रति, और फिर उनके मन में तीव्र इच्छा जागी कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चैतन्य महाप्रभु के पास चले जाए। तो उन्होंने कई पत्र लिखा महाप्रभु को कि हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना है, तो लेकिन महाप्रभु पहले तो उत्तर नहीं दिए। बाद में उनको उत्तर दिए कि जैसे कोई स्त्री है, अगर उसका कोई और प्रेमी है तो क्या करती है स्त्री, अपने घर के कार्य को छोड़ती नहीं है, लेकिन वो घर के कार्य को इतने अच्छे से करती है कि उनके पति उन पे शक ना करे, लेकिन मन में हमेशा चिंतन करती है अपना प्रेमी का। तो यानी इसका क्या तात्पर्य है, महाप्रभु उनको समझाए कि अभी आप अपने कर्तव्य अच्छे से कीजिए मंत्री के रूप में, और अंदर से आप मेरा चिंतन कीजिए और हरिनाम लीजिए, और बहुत जल्दी आपका उद्धार होगा। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी समझ गए कि महाप्रभु अभी हमारा उद्धार नहीं चाहते। उनका नाम नवाब हुसैन शाह ने उनका दीक्षा कर दिया था, क्या नाम दिया था उनको, दबीर खास और शाकर मलिक। तो ये बहुत बड़ी उपाधि थी उनके लिए, क्योंकि कोई साधारण हिंदू के ऐसे मुसलमान का नाम नहीं दिया जाता था। तो नवाब हुसैन शाह उन पर इतने प्रसन्न थे कि एक विशेष टाइटल उनको दिया, विशेष उपाधि। दबीर खास और शाकर मलिक। तो ऐसे कई दिन तक वो फिर राज्य करते रहे। तो एक बार महाप्रभु जब वृंदावन जाना चाहे तो वो बंगाल होके रास्ता में आए। सारे लोग आश्चर्यचकित थे, भी अगर आपको वृंदावन महाप्रभु को जाना है तो बंगाल क्यों आ रहे, क्योंकि सीधा अगर आप उड़ीसा से वृंदावन आना चाहेंगे जगन्नाथपुरी से तो बंगाल रास्ते में नहीं आता, बंगाल तो दक्षिण में हो गया। तो डायरेक्ट रूट नहीं लिया महाप्रभु ने। मान लीजिए जैसे आपको यहां से दिल्ली जाना है, कोई बोलेगा मैं पहले मथुरा जाके फिर दिल्ली जाऊंगा, तो उल्टा हो गया, सीधे दिल्ली जाना चाहिए। तो ऐसे महाप्रभु बंगाल होके बोले वृंदावन जाऊंगा, तो भक्तों को समझ में नहीं आया महाप्रभु क्यों बंगाल जाना चाहते हैं। तो विशेष कारण क्या था, महाप्रभु बंगाल गए केवल रूप और सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए। देखिए महाप्रभु कितना प्रेम करते हैं, पूरे जगन्नाथपुरी से वो बंगाल आए और पहले कुलियाग्राम में गए, कई स्थान में गए, लाखों लोग उनके साथ हरि नाम कर रहे थे और करते करते वो रामकेली नाम के स्थान में पहुंचे। और रामकेली में भी महाप्रभु के साथ लाखों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ गए और सब क्या कर रहे थे, जोर से उच्च स्वर में महाप्रभु नित्य कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लाखों लोग महाप्रभु के साथ नित्य कीर्तन कर रहे थे, महाप्रभु प्रेम में उन्मत होके कीर्तन कर रहे थे, नित्य कर रहे थे, उनके सुंदर रूप को देख के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। और ये खबर पहुंच गई राजा के पास। राजा ने सुना कि ऐसे ऐसे कोई है फकीर जो कि लाखों लोग उनके साथ चल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। राजा को थोड़ा सा भय भी होगा, भाई कौन है क्या है। तो राजा ने पूछा केशव खान, उनके जो पार्षद थे उनको भी, कौन है। तो केशव खान ने कहा ये कुछ नहीं, ऐसे ही एक फकीर है, गरीब है, कुछ नहीं, बस घूम रहा है, कुछ लोग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। लेकिन राजा समझदार था, बोला क्या कह रहे हो केशव खान, तुम जानते नहीं कि जिसको हम अल्लाह कहते हैं, जिसको तुम लोग ईश्वर कहते हो, वही परम पुरुष परम भगवान, वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। मैं सबको तनख्वाह देता हूं तब लोग मेरी बात सुनते हैं, मैं राजा हूं, लेकिन इनको देखो कुछ नहीं है, इनके पास फकीर है, लेकिन लाखों लोग उनके पीछे जा रहे हैं और सब भगवान का नाम ले रहे हैं, तो तुम कहते हो साधारण व्यक्ति है। एक्चुअली केशव खान जान मुझ के कहा नहीं, क्योंकि उसको डर था, क्योंकि राजा बहुत ही क्रूर था नवाब हुसैन शाह, तो उनको डर था कि ऐसा ना हो कि राजा कुछ नुकसान पहुंचाए महाप्रभु को। तो राजा ने ऐसा कहा, फिर राजा ने रूप गोस्वामी को पूछा तुम क्या बोलते हो, व्यक्ति कौन है। तो रूप गोस्वामी ने ये कहा कि हे राजा, जिनके जिनके बल से तुम राजा बने हो ये वही व्यक्ति है, अपने आप से पूछो अपने। तो राजा ने स्वीकार किया, राजा ने कहा हाँ मुझे भी विश्वास है ये अल्लाह ही है। और राजा ने आज्ञा दे दिया कि आज से मेरे राज्य में इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इनको जहां जाना है जाने दो, जो भी करना है इनको करने दो। तो इस तरह से महाप्रभु कीर्तन करते रहे कई दिन तक। लेकिन और दबीर खास और शाकर मलिक जो रूप सनातन थे, उनकी तो इच्छा थी महाप्रभु से मिलने के लिए, उनकी तीव्र इच्छाएं थे मिलने के लिए, और उनको थोड़ा अंदर में डर भी था कि राजा अभी तो कह रहा है कि इनको करने दो, लेकिन राजा का कोई भरोसा नहीं कब इसका मन बदल जाए। तो वो रूप और सनातन एक दिन रात में साधारण वेश धारण करके और पहुंच गए वो स्थान में जहां रूप और सनातन जहां महाप्रभु निवास कर रहे थे रात के समय। और उन्होंने दांत में तिनका ले लिया और अत्यंत विनम्र भाव से महाप्रभु के चरणों में आके गिर गए। पहले नित्यानंद प्रभु के पास आए और सबने उनको फिर महाप्रभु के पास लेके गए। और महाप्रभु के साथ जाते के समय उन्होंने उनके चरणों में दंडवत होके गिर गए। जो हम कह देते हैं दंडवत प्रणाम, लेकिन हम दंडवत प्रणाम का मतलब नहीं समझते। दंडवत यानी जैसे दंडा गिर जाता है, दंडा को नीचे ऊपर रखेंगे थट से नीचे गिर जाता है। तो दंडवत प्रणाम मतलब यही कि हम किसी वैष्णव या भगवान के चरणों में पूरे रूप से पूरे आत्मसमर्पण करके गिर जाना। तो ये अत्यंत दयनीय भाव से दोनों भाई रूप सनातन महाप्रभु के चरणों में गिर गए और बहुत सुंदर प्रार्थना किए। ये चैतन्य चैतन्य इतना आता है, बहुत सुंदर प्रार्थना, अभी समय नहीं है आप पढ़ सकते हैं। तो मध्य लीला के ही पहले अध्याय में ये आता है कि कैसे इतनी सुंदर प्रार्थना करते हैं रूप सनातन कि हे प्रभु, जो नरोत्तम दास ठाकुर जो भजन लिखते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, उसी भाव में लिखते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतार, मोसम पतित प्रभु ना पाई बेयार। तो यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप तो पतित पावन हैं, आप अवतार लिए पतितों का उद्धार करने के लिए, हमसे ज्यादा पतित कोई भी नहीं है। अपनी तुलना करते हैं जगाई मधाई से कि आपने जगाई मधाई का उद्धार कर दिया, लेकिन हम उनसे भी ज्यादा पतित हैं। जगाई मधाई तो धामवासी थे, हाँ थोड़ा बहुत पाप किए थे, लेकिन वो तो एक हरि नाम से सारे पाप चले जाते, लेकिन हम इतने अधम हैं, हम मलेच्छ की सेवा कर रहे हैं, यवन की सेवा कर रहे हैं, जो गो हत्या कर रहा है, इतना पाप कर रहा है, हम उसकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए हमसे ज्यादा पतित और कोई भी नहीं है। अगर आपको अपना पतित पावन नाम सार्थक करना है, अगर आपको प्रूफ करना है कि आप पतित पावन है, तो आप हमारा आपको उद्धार करना पड़ेगा। चैलेंज किए महाप्रभु, अगर आप पतित पावन है तो हमसे ज्यादा पतित कोई नहीं है, तो आप सबसे पहले हम पे कृपा करिए। कहते हैं हमारा इच्छा है आपकी कृपा पाने का, वो ऐसा है मानो कोई बौना आदमी चांद छूना चाहे। वैसे तो लंबा आदमी भी चांद नहीं छू सकता, लेकिन कहते अगर मानो कि बौना आदमी है, क्या कहते हैं बौना, जो बहुत नाटे रहते हैं, अगर वो चांद छूना चाहे तो उसके लिए संभव नहीं है। तो हमारी इच्छा ऐसे ही है, हम सबसे पतित हैं, हमारे में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन क्योंकि आप पतित पावन है इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम पे आप कृपा कीजिए। और उनकी दयनीयता देख के, उनकी प्रार्थना देख के महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, उनको गले लगा लिए और बोले अब दयनीयता छोड़ दो, इतने दयनीयता से मेरा हृदय फट जा रहा है। फिर महाप्रभु उनको गले लगाए, बहुत प्रसन्न हुए और नाम दिए कि तुम दोनों भाई मेरे नित्य पार्षद हो, आज से तुम्हारा नाम है रूप और सनातन। तो महाप्रभु ने वहां उनको दीक्षा दी और उनका नाम नया नाम दिया, रूप और सनातन। और महाप्रभु विशेष उन पर आशीर्वाद किए और सारे वैष्णवों को बोले कि इन दोनों भाइयों को आशीर्वाद दो। नित्यानंद प्रभु जो जी वहां महान वैष्णव थे, सबका उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया और महाप्रभु ने कहा बहुत जल्दी कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। और उसके बाद दोनों भाइयों का बिल्कुल भी मन नहीं लगा राज्य कार्य में। रूप गोस्वामी तो तुरंत छोड़ दिए अपने राज्य कार्य को और अपने जितने संपत्ति था उसको उन्होंने बांट दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं ये सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है कि उन्होंने आधा संपत्ति वैष्णव ब्राह्मणों को दे दिया और 25% अपने रिश्तेदारों को दिया और 25% रखे किसी आपातकालीन स्थिति के लिए, इमरजेंसी के लिए। तो रूप गोस्वामी तो छोड़ के चले गए, लेकिन सनातन गोस्वामी क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे, उन पे जिम्मेदारी और ज्यादा थी, तो तुरंत छोड़ के जा नहीं पाए। तो सनातन गोस्वामी, लेकिन उनको राज्य में तो मन लगता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि सिक लीव, आज भी ऐसे है ना, भक्तों को भी यात्रा में आना होता है, कुछ करना होता है या नहीं मिलता तो सिक लीव करते हैं, मैं बीमार हूँ। तो सनातन गोस्वामी ने वही सिक लीव लेटर दे दिया राजा को कि मैं बीमार हूँ, अभी मैं अपने ऑफिस में नहीं आ सकता। तो कुछ दिन बीत गए, अब जैसे हमने बताया कि पूरी तरह से राज्य चलाने वाले सनातन गोस्वामी थे, तो नवाब हुसैन शाह को बड़ी दिक्कत आई, तो वो एक बार स्वयं मिलने आ गए अपने विराज वैद्य को लेके कि चलो जाके देखते हैं क्या हो गया सनातन गोस्वामी। और जब आके देखे तो सनातन गोस्वामी बिल्कुल स्वस्थ थे और सारे ब्राह्मणों के बीच में क्या कर रहे थे, श्रीमद भागवतम पढ़ रहे थे। तो राजा को बहुत क्रोध आया, बोले ये क्या सनातन, तुम्हारा बड़ा भाई, यानी राजा अपने आप को कह रहे मैं तो व्यस्त हूं सबको मारने में काटने में, और मैं चाहता हूं तुम राज्य चलाओ, तुम यहां बैठे हो। सनातन गोस्वामी ने कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, अब मैं राज्य का कार्य नहीं कर सकता, मैं आपके साथ पाप कार्य में भागीदार नहीं बन सकता। तो राजा को बहुत क्रोध आया नवाब हुसैन शाह को, तुरंत उन्हें आदेश दिया इसको बंदी बना लिया जाए, और सनातन गोस्वामी को बंदी बना लिया गया, उनको जेल में डाल दिए कारागृह में। तो सनातन गोस्वामी जब जेल में थे तो उस समय सनातन गोस्वामी चिंतन कर रहे थे कि कैसे बाहर आए, और जैसे कि सनातन गोस्वामी तो प्रधानमंत्री थे तो उनको सब पता था कि किस तरह से कैसे काम निकालना है, तो इसलिए उनको ये आइडिया आया। अच्छा, जाने के पहले रूप गोस्वामी ने एक बनिए के पास उन्होंने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं छोड़ के गए थे और बता के गए थे कि अगर आपको आवश्यकता हो तो आप इसका सहायता ले सकते हो। तो सनातन गोस्वामी ने उस जेलर को बुलाया और कहा ऐसे ऐसे बात है और तुम तो बड़े जिंदा पीर हो, बड़े धार्मिक आदमी हो और मैं देखो मक्का जाना चाहता हूँ, मुझे आप उधार करो, क्योंकि मुसलमान के लिए मक्का जाना सबसे बड़ा उपलब्धि माना जाता है। तो फिर उन्होंने सनातन गोस्वामी उनको 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और ये देने के बाद उसका थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति जागा वो जेलर के अंदर, मतलब उसका देखा रही है तो अच्छी तो उसके, लेकिन फिर भी वो भय था, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, राजा को पता चल जाएगा फिर क्या होगा। तो सनातन गोस्वामी थोड़ा और स्वर्ण मुद्राएं दे दिए और ये मिलने के बाद तो फिर बहुत लोभ आ गया इस जेलर को और तुरंत मान गया, बोला ठीक है मैं छोड़ तो दूंगा। सनातन ने कहा चिंता मत करो, तुम कहना कि ये गया था अपने शौच क्रिया करने गंगा किनारे और गंगा में बेड़ी के साथ ही डूब गया। तो तुरंत जेलर ने सारे बेड़ी काट दिए सनातन गोस्वामी के और सनातन गोस्वामी जेल से भाग गए और मेन रास्ते में नहीं गए क्योंकि बाद में उनको बंदी पकड़ लेते, कोई सिपाही पकड़ लेते, तो इसलिए वो जंगलों के बीच से भागते गए। उनके साथ में एक ईशान बोल के सेवक थे और ऐसे कई दिन तक जंगलों के बीच में भागते रहे। बीच में एक लीला और भी हुई, आप सब सुने ही उस लीला को, कि कैसे एक व्यक्ति था जिसके यहाँ वो लोग आके रुके और उसके पास एक वो था ज्योतिष और वो देख लिया कि इनके पास 8 स्वर्ण मुद्रा है, वो मानना चाहता था और सनातन गोस्वामी समझ गए अति भक्ति सूर्य लक्षण, तो उनको वो 8 सिक्का दे के आगे चले गए। आगे जाके फिर वो अपने श्रीकांत उनके जो बहनों थे उनसे मिले, फिर आगे वो फिर बनारस आए और जब वो बनारस पहुंचे उस समय महाप्रभु वृंदावन से वापस लौट रहे थे। तो जब वृंदावन से वापस लौटे तो महाप्रभु भी बनारस में थे और सनातन गोस्वामी बनारस पहुंचे और उनको पता चला कि यहीं पे महाप्रभु लीला कर रहे हैं, हजारों लाखों लोग हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे बनारस में। तो यहीं सनातन गोस्वामी महाप्रभु से मिलने आए और महाप्रभु रहते थे चंद्रशेखर आचार्य के घर में और तपन मिश्र के यहाँ प्रसाद लेते थे। तपन मिश्र पिताजी है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के। तो जब वो चंद्रशेखर आचार्य के घर के बाहर पहुंचे तो सनातन गोस्वामी का भेष कैसा था, वो तो मुसलमान उसमें थे और जेल से आए थे कई दिन से, बड़े बड़े दाढ़ी थे, तो वो एक मुसलमान फकीर की तरह लग रहे थे। महाप्रभु ने कहा देखो बाहर कोई वैष्णव है, बोले बाहर तो कोई वैष्णव नहीं है। महाप्रभु ने अच्छा कोई बाहर खड़ा है उसको बुला लो। तो जब महाप्रभु देखे सनातन गोस्वामी को तुरंत उनके गले लगा दिए। सनातन गोस्वामी पीछे भागे, नहीं मुझे मत स्पर्श कीजिए मैं पतित हूँ। महाप्रभु ने जोर से उनको स्पर्श किया, बोला आज मेरे आंख सफल हो गए, आप जिसे वैष्णव को हमने दर्शन किया आपका स्पर्श से मैं पवित्र हो रहा हूँ, ऐसा महाप्रभु कह रहे सनातन गोस्वामी को, बहुत प्रसन्न हुए। फिर कई सारे लीला है लेकिन सबसे विशेष रूप से महाप्रभु ने उनको 2 महीने तक दिव्य ज्ञान प्रदान किया बनारस में, 10 अश्वमेध घाट। आप लोग शाम को 3-4 दिन से कृष्णानंद पूजो प्रवचन ले रहे, सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने शिक्षा प्रदान की 2 महीने तक। चैतन्य चरितामृत का बहुत ही मुख्य भाग है और श्रील प्रभुपाद जी 1967 में किताब लिखे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, महाप्रभु की शिक्षाएं, आज वो किताब है ना चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। विशेष करके महाप्रभु ने जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की थी उसी के आधारित ये किताब प्रभुपाद जी ने लिखा था, क्योंकि उससे प्रभुपाद जी को पता नहीं था आगे चल के मैं चैतन्य चरितामृत लिख पाऊंगा या नहीं, इसलिए उन्होंने वो छोटी किताब लिख दी। तो इसलिए आप लोग अगर पूरा चैतन्य चरितामृत पढ़ें तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं पढ़े अगर तो कम से कम वो छोटी पुस्तक जरूर पढ़िएगा, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। ये प्रभुपाद जी ने 1967 में इसको लिखा प्रभुपाद जी ने, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण है हम सब गौड़ीय वैष्णव के लिए महाप्रभु ने जो शिक्षा दी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, वो पूरे हमारे भक्ति जीवन का आधार वही है। जैसे रूप गोस्वामी को 10 दिन तक शिक्षा दिया इलाहाबाद में और सनातन गोस्वामी को पूरे 2 महीने तक, और सनातन गोस्वामी को उन्होंने बिल्कुल बेसिक से शुरू करके और सबसे जो ऊंचा स्तर है राधा कृष्ण की भक्ति उस सबके बारे में ज्ञान दिया। शुरुआत कैसे हुई, सनातन गोस्वामी पूछते हैं प्रश्न के आमी क्यानो मोरे जाड़े तापत रहे, कि हे प्रभु मैं कौन हूँ, लोग मुझे विद्वान कहते हैं लेकिन मैं तो महामूर्ख हूँ, मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ और क्यों इस संसार में मैं कष्ट अनुभव कर रहा हूँ। तो महाप्रभु ने फिर अपना शिक्षा प्रारंभ किए। सबसे पहला महत्वपूर्ण श्लोक क्या बोला उन्होंने, जीवर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, कि हम सब कृष्ण के नित्य दास है। और फिर बताए कैसे हम कृष्ण को भूल के संसार में बद्ध है। तो महाप्रभु वहीं से अपना शिक्षा शुरू किए। संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान, सारा ज्ञान सनातन गोस्वामी को उन्होंने बताया। कृष्ण के बारे में, कृष्ण कैसे परम भगवान है, कृष्ण के अलग अलग अवतारों के बारे में सब कुछ विस्तार से वर्णन किया। आध्यात्मिक जगत कैसा है, उसमें अलग अलग वैकुंठ लोक है, उनमें श्रेष्ठ कृष्ण लोक है, हाँ उसके तीन विभाग है, द्वारका, मथुरा और वृंदावन। तो इस तरह से पूरे विस्तार में पूरे सिद्धांत सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने बताया। फिर भक्ति कैसे करनी है, भक्ति के 64 अंग, वैष्णव के 26 गुण, और फिर विशेष करके जो पांच बताए भक्ति के सबसे मुख्य पांच अंग क्या है, महाप्रभु ने कहा भक्तों का संग, हरिनाम संकीर्तन, श्रीमद भागवतम का श्रवण, धामवास और अर्च विग्रह की सेवा। तो भक्ति के जितने अंग हैं ये पांच सर्व श्रेष्ठ हैं, ये पांच हमें आवश्यक है हमारे दिन करें। तो इस तरह से महाप्रभु ने 2 महीने तक शिक्षा दिया और फिर विशेष आशीर्वाद दिया सनातन गोस्वामी को कि जाओ आप व्रज में जाओ और ये सब कार्य करो। और फिर सनातन गोस्वामी जाना तो नहीं चाहते थे, इन महाप्रभु के आज्ञा मान के वो वृंदावन आ गए और महाप्रभु बनारस से पुरी आ गए। तो सनातन गोस्वामी वृंदावन आए, वहां सुबुद्धि राय से मिले, सारे ब्रजमंडल भ्रमण किए, लेकिन फिर से उनको महाप्रभु से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। तो 1 साल वृंदावन में रह के वो फिर से जगन्नाथपुरी आए महाप्रभु से मिलने, और जगन्नाथपुरी में फिर वो 1.5 साल रहे। लेकिन रास्ते में जब सनातन गोस्वामी आ रहे थे तो उनके वो झारखंड जंगल होके आए, क्योंकि वो सुने थे झारखंड जंगल से महाप्रभु आए थे, तो उसी पथ में वो जाना चाहते थे। लेकिन झारखंड बहुत घना जंगल था, आज भी झारखंड में काफी जंगल है, उस समय तो और भी घना जंगल था। तो वहां सनातन गोस्वामी जब आए तो कुछ तालाब वगैरह में स्नान कर लिए, पानी पी लिए, तो उस गंदे पानी से उनके शरीर में बहुत सारे फुंसी फोड़े आदि कुछ बीमारी हो गई। तो जगन्नाथपुरी पहुंचे, बहुत प्रसन्न हुए महाप्रभु से मिलके, और महाप्रभु उनको आलिंगन करने आए और सनातन गोस्वामी उनसे दूर भागे, क्योंकि शरीर में जो सब फुंसियां थी उससे वो गंदे बदबू और वो क्या कहते हैं कुछ निकल रहा था रात। तो लेकिन महाप्रभु उनको जबरदस्ती आलिंगन किए, महाप्रभु का प्रेम देखिए भक्तों के प्रति। तो इस तरह से वो जब पुरी में थे तो उनको अंदर से बहुत गंदा लग रहा था, मैं इतना पतित हूँ, मेरे शरीर इतना गंदा है, महाप्रभु आके मुझे स्पर्श करते हैं, उनको बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने निर्णय किया कि मैं रथ के नीचे अपना शरीर त्याग दूंगा। तो महाप्रभु अगले दिन आए, बोले सनातन ये क्या तुमने सोचा, ये शरीर क्या तुम्हारा है, ये शरीर मेरा है, तुमने मुझे आत्मसमर्पण किया है, इसका अधिकार तुम्हारा नहीं है, मेरा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि जब हम गुरु के प्रति शरणागत होते हैं तो शरीर हमारा नहीं होता, ये गुरु का प्रॉपर्टी बन जाता है। तो इसमें हमारा अधिकार नहीं है, गुरु जैसा चाहे वैसा हमें करना चाहिए, कृष्ण का ये संपत्ति हो जाता है। तो फिर सनातन गोस्वामी शर्मिंदा हुए, बोले ठीक है महाप्रभु आप जैसा बोलेंगे। महाप्रभु ने बहुत विशेष स्टेटमेंट कहा कि सनातन इस शरीर के द्वारा मैं कितने कार्य करूंगा और तुम इस शरीर को नष्ट करना चाहते हो। तो यही भाव होना चाहिए कि हम सब अपना शरीर को कि कैसे हम भगवान की सेवा में एक निमित्त बने, करने वाले तो कृष्ण है, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, कि हम अपने आप को भगवान के प्लान में एक निमित्त बनाते ताकि वो हमें व्यवहार कर पाए अपने सेवा में गुरु और कृष्ण। तो इस तरह सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने बताया, और ऐसे कई सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। विशेष करके मैं और 5 मिनट और लूंगा, विशेष करके सनातन गोस्वामी ने दैन्यता का शिक्षा हम सबको दिया है। महाप्रभु को ऐसा कहा जाता है कि 4 मुख्य शिष्य में 4 अलग अलग हमें शिक्षा देते हैं। जैसे रामानंद राय देते हैं कि कैसे धीर होना चाहिए, इंद्र पे संयम होना चाहिए, हरिदास ठाकुर के द्वारा उन्होंने सहनशीलता दिखाया कि उनको 22 बाजार में मारा गया फिर भी हरिदास ठाकुर विचलित नहीं हुए। तो वैसे ही सनातन गोस्वामी के द्वारा महाप्रभु ने दैन्यता, ह्यूमिलिटी के बारे में हमें शिक्षा दी कि दैन्यता क्या होता है। सनातन गोस्वामी आप कल्पना कीजिए, प्रधानमंत्री थे पूरे बंगाल के, इतने बड़े पोस्ट में थे उसको छोड़ के, लेकिन फिर भी वो इतने दैन्य थे, इतने विनम्र थे। तो एक बार महाप्रभु उनको बुलाए मिलने के लिए यमेश्वर टोटा में, महाप्रभु थे टोटा गोपीनाथ के पास में। तो सनातन गोस्वामी मेन रास्ते पे नहीं आके गरम गरम बालू के रास्ते में आए समुद्र के किनारे। तो महाप्रभु ने पूछा भाई तुम इस रास्ते में क्यों आए, तो बोले देखिए मेन रास्ते में आता जगन्नाथपुरी मंदिर के सामने से होके तो वहां जगन्नाथ जी के सेवक भी आते जाते हैं, और अगर बाई चांस मेरा परछाई उन पे गिर जाता या वो मुझे स्पर्श कर देते तो अपवित्र हो जाते। तो अपने आप को इतना हीन मान रहे थे वो कि मैं अगर मेरी हवा भी दूसरे पे लग जाए तो दूसरे अपवित्र हो जाएंगे। तो इसीलिए वो समुद्र के किनारे होके आए और गरम गरम बालू से उनका पांव जल गया। तो महाप्रभु बोले कि देखो तुम सबसे तुम्हारा ऐसा दैन्य और कोई भी नहीं। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, और फिर एक डेढ़ साल रहने के बाद महाप्रभु बोले अब जाओ ब्रज में। एक और लीला हुई, महाप्रभु ने एक उनको बहुत अंदर से वो लगता था कि मेरे जो फुंसियां हैं, एक बार महाप्रभु उनको जोर से ऐसे गले लगाया कि उनकी सारी बीमारी सब कुछ ठीक हो गया। और फिर वो वृंदावन आए और वृंदावन में बहुत सारी सेवाएं उन्होंने की, जैसा मैंने कहा कि वो मंदिर के निर्माण किए। कौन सा मंदिर? राधा मदन मोहन जी का मंदिर, जो आज भी है, पहले और भी विशाल था लेकिन औरंगजेब ने उसे तोड़ दिया। तो मदन मोहन जी की स्थापना की वहां पे सनातन गोस्वामी ने, वो पहला मंदिर है व्रज का, मदन मोहन जी मंदिर। और सनातन गोस्वामी ने कई ग्रंथ लिखे जिसका हमने आपको बताया, और भक्ति का बहुत प्रचार किया सनातन गोस्वामी ने। और विशेष करके एक जो सबसे महान गुण था सनातन गोस्वामी का कि ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते थे वो, और ब्रजवासियों को वो प्रचार करते थे। गांव गांव में जाते थे वो, और सब ब्रजवासियों इतने उनसे प्रेम करते थे, सबसे पूछते थे आपका फसल कैसा है, आपके गाय कैसे हैं, आपके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक तो है। तो इस तरह से बहुत ही उनका मीठा संबंध था सारे ब्रजवासियों के प्रति, और सारे ब्रजवासी उनको अपना गुरु मानते थे। तो उनका क्या था कि वो हर दिन गोवर्धन की परिक्रमा करते थे और अलग अलग दिन अलग अलग गांव में जाते थे, और जब गांव में आते थे तो इतना सब हर्ष उल्लास से उनका स्वागत करते थे, इतना बड़ा उत्सव बनता था। लेकिन जब वापस जाते थे सब इतना रो रो के उनको विदाई देते थे। तो हर दिन की लीला था, वो अलग अलग गांव जाते और लोगों को भक्ति के बारे में उपदेश देते, और साथ साथ उनके साथ जैसे मैंने कहा कि व्यावहारिक संबंध भी उनका बहुत सुंदर था। और आज ही की तिथि के दिन जब वो वृद्ध हो गए, तो हर दिन जब गोवर्धन परिक्रमा करते थे लेकिन जब थोड़े से और वृद्ध हो गए तो वो अपना स्थान वहीं चुन लिए, भजन कुटीर वहां बना लिए चकलेश्वर महादेव के पास में। आज भी उनका भजन कुटीर है गोवर्धन के किनारे, मानसिंह गंगा के किनारे, और वहां भजन करे। तो एक बार मच्छर बहुत उनको सताए तो वहां से वो अपना स्थान चेंज करना चाहते थे। तो शिव जी उनके सपने में आए और बोले कि आप कृपा ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत प्रसन्नता है आपका संग प्राप्त करके, आप यहीं रहिए, कल से एक भी मच्छर आपको परेशान नहीं करेगा। कहते हैं आज भी उस स्थान में मच्छर नहीं आते, ऑल आउट शिव जी का ऑल आउट। तो वहां पे चकलेश्वर महादेव खुद है, तो वहां पे वो सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर आज भी है। और फिर जब वृद्ध हो गए तो ये लीला भी आप जानते हैं कि भगवान उनको एक गोवर्धन शिला दे दिए, एक छोटे से बालक के रूप में आए, बोले बाबा आप इतने बूढ़े हो गए, अब ये परिक्रमा मत करो, इस शिला का चार बार परिक्रमा करो। ये शिला आज कहाँ पे है? राधा दामोदर मंदिर में, जिसमें भगवान के चरण चिन्ह है, बांसुरी के चिन्ह आदि है। तो जब सनातन गोस्वामी बहुत वृद्ध हो गए थे, और ब्रज में कई स्थान में उनका भजन कुटीर है, गोकुल में भी उनका भजन कुटीर है, नंदगांव में है, कहां पे? पावन सरोवर के किनारे। तो पूरे ब्रज में सनातन गोस्वामी ने भ्रमण किया और प्रचार किया, और अंत में वहीं पे चकलेश्वर महादेव के पास जो भजन कुटीर था वहीं पे उन्होंने समाधि में प्रवेश किया, अपना शरीर त्यागा वहीं पे, और वहां से फिर उनके दिव्य शरीर को वृंदावन लाके यहाँ पे उनकी समाधि है मदन मोहन मंदिर के पास में। तो बस लास्ट चीज है कि आज के दिन ब्रजवासी उनसे इतना प्रेम करते थे कि जब उनका तिरोभाव हुआ तो सारे ब्रजवासी अपना सर मुंडवा लिए, और उनके सम्मान में सबने गोवर्धन परिक्रमा की, क्योंकि सनातन गोस्वामी हर दिन गोवर्धन परिक्रमा करते थे। तो आज भी प्रथा चल रही है, जैसा आप जानते हैं कि करोड़ों की संख्या में लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, इसकी प्रथा यहीं से शुरू हुई, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अगर कई जग जो बूढ़े ब्रजवासी उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे ऐसे ऐसे गुरु जी थे और उनके जब तिरोभाव हुआ तो वहीं से प्रथा शुरू हुई। तो सोचिए सनातन गोस्वामी से लोग कितना प्रेम करते थे ब्रजवासी कि उनके सम्मान में वो मुंडिया पूर्णिमा करके लाखों लाखों की संख्या में लोग परिक्रमा करते हैं। शायद आज अब शायद पिछले साल सुना था पूरे 2-3 दिन में 2-3 करोड़ लोग परिक्रमा करते हैं गोवर्धन की, इस बार तो था बारिश का मौसम है, शायद कम किए होंगे। तो इतने लोग आते हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने, तो ये प्रथा यहीं से शुरू हुई, सनातन गोस्वामी को इतने लोग प्रेम करते थे कि उनके सम्मान में परिक्रमा शुरू की। तो बहुत ही विशेष दिन है, सनातन गोस्वामी हमारे संबंधाचार्य हैं, तो संबंध ज्ञान मदन मोहन जी के द्वारा हमें मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण कि हम समझे कि जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि हम कृष्ण के नित्य दास है, संबंध ज्ञान, और उसके बाद फिर अभ्युदय और प्रयोजन। तो आज सनातन गोस्वामी से हम प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी कृपा दृष्टि हम पे पड़े और हम भी संबंध ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट हो, कृष्ण के साथ हम अपना संबंध जोड़ पाए। और एक प्रार्थना हम कर सकते हैं कि सनातन गोस्वामी विनम्रता के, जैसे मैंने कहा, सबसे अच्छे उदाहरण है, तो हम उनसे ये भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें भी विनम्रता का थोड़ा गुण दे, क्योंकि अगर हम विनम्र नहीं होंगे तो हम हरि नाम का जप ठीक से नहीं कर सकते और भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो आज ये दो प्रार्थना हम कर सकते हैं सनातन गोस्वामी से कि संबंध ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट हो और हम विनम्र बने और हरिनाम के प्रति रुचि बढ़े। सनातन गोस्वामी हरिनाम के भी बहुत गुणगान किए। एक वो छोटी कहानी जो आप सब सुने होंगे कि एक बार एक भक्त उनके पास आए, शिव जी के भक्त, शिव जी ने बोला कि जाओ उनके पास जाओ, इनके पास चिंतामणि है। और चिंतामणि जब वो पूछे कहाँ है, तो सनातन गोस्वामी कहा मैंने कचरे के डब्बे में डाल दिया। तो वो चिंतामणि को लाए कचरे के डब्बे से, जिसको शिव सोना बन गया। तो उनके मन में डाउट हुआ ब्राह्मण के, भाई ये बाबा ये चिंतामणि को डस्टबिन में क्यों डाले। तो दोबारा उनके पास गए कि आप चिंतामणि को अगर डस्टबिन में डाले हैं कूड़ेदानी में, यानी इससे और मूल्यवान चीज आपके पास है, तो क्या है इससे मूल्यवान चीज। तो सनातन उसमें अच्छा तुम्हें चाहिए तो पहले जाओ चिंतामणि को यमुना जी में फेंक के आओ। तो बड़ी उनके अंदर श्रद्धा थी, नहीं तो कौन फेंके। तो जाके तुरंत चिंतामणि को फेंक के आ गए। फिर सनातन गोस्वामी पास आए और फिर सनातन गोस्वामी ने क्या कहा, इससे ऊंचा चीज क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत्व नाम नामिनत्व। तो श्रील प्रभुपाद जी हम सबको सनातन गोस्वामी शिक्षा प्रदान किए, तो हम सबको पढ़ना चाहिए और सनातन गोस्वामी को प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। श्री सनातन गोस्वामी की, सनातन गोस्वामी तिरुभा महामहोत्सव की, व्यास पूजा महामहोत्सव की, गुरु पूर्णिमा की, हरे कृष्णा।